पृष्ठ संख्या 143, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सत्याग्रह की प्रभावशीलता में पूरी आस्था प्रकट की थी। उनका कहना था कि विदेशी आक्रमण और युद्ध के विरुद्ध सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। युद्ध में हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। मानव संबंधों में पाश्विक शक्ति भाग्यनियंता नहीं हो सकती। पृष्ठ संख्या 144, विश्व के अस्थायी शांति और न्याय के लिए किसी और साधन की आवश्यकता है, और वह साधन अहिंसक प्रतिरोधी है। सत्याग्रह न केवल युद्ध के समान प्रबल प्रभावशाली साधन है, बल्कि उससे निश्चय ही श्रेष्ठ है। युद्ध में भौतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अंतिम परिणाम चरम विनाश है। दूसरी ओर सत्याग्रह में नैतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विनाश का भाव भी नहीं होता। युद्ध दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, जबकि सत्याग्रह आत्म पीड़न द्वारा अभिव्यक्त होता है। युद्ध शक्ति को न्याय मानता है, जबकि सत्याग्रह विवेक के लिए आग्रह करता है। युद्ध से क्रोध, घृणा और प्रतिशोध को जन्म मिलता है, जबकि सत्याग्रह से प्रेम, करुणा और मातृभाव का उदय होता है। युद्ध अपने पीछे कड़वाहट और भावी युद्धों के बीज छोड़ जाता है, जबकि सत्याग्रह ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसकी समाप्ति पर अस्थायी शांति व्याप्त होती है। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया, और उन्होंने अबिसिनिया के निवासियों, चेको, पोलो तथा आक्रमण से पीड़ित अन्य पक्षों को परामर्श दिया कि वे आक्रमणकारियों के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति अपनाएं। चीनियों को गांधी ने परामर्श दिया कि यदि वे लोग उनकी अहिंसा की विचारधारा को अपनाते तो जापान के विनाशकारी नवीनतम यंत्रों का कोई भी उपयोग नहीं करता। गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि अहिंसक प्रतिरोध अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग से आक्रमणकारी पर निरंतर एक ऐसा आक्रमण करता रहता है जिससे अंतिम विजय उसकी ही होती है। सत्याग्रह में संख्या का इतना महत्व नहीं होता जितनी गुणवत्ता का होता है। सफलता बहुमत के कारण नहीं, अपितु प्रायः अल्पमत के कारण होती है। भौतिक दृष्टि से बलवान व्यक्तियों के कारण नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्तियों के कारण होती है। सत्याग्रह के मार्ग में आत्मा की आवाज़ सर्वोच्च होती है, और यदि किसी भी सरकार के आदेश और कानून आत्मा की आवाज़ का हनन करने लगे तो आत्मबल से उनका प्रतिरोध करना होता है, चाहे इसमें बहुमत का समर्थन मिले या न मिले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ कि गांधी ने अकेले ही किसी कानून या व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि बुराई के साथ असहयोग तो एक पवित्र कर्तव्य है। आज के युग में ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके इस मार्ग की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। 20वीं शताब्दी में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में अश्वेतों के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन गांधीवादी विचारधारा के आधार पर चलाया। पृष्ठ संख्या 145, डॉक्टर किंग ने स्पष्ट लिखा कि सामाजिक रूपांतरण की अहिंसक क्रिया का प्रयोग उन्होंने अमेरिकी अश्वेतों के साथ किए जाने वाले अन्यायपूर्ण भेदभाव के विरोध में किया। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत जनता ने समय समय पर अहिंसक प्रतिरोध किया। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता ओलिवर ओम्बो का कथन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी दर्शन की प्रासंगिकता को इन शब्दों में व्यक्त करता है। महात्मा गांधी के अतिरिक्त किसी अन्य नाम नहीं सोच सकता जो हमें भयंकर संकट के मध्य साहस व मानवता प्रदान कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा का प्रयोग यही स्पष्ट करता है कि वर्तमान युग में गांधी की प्रासंगिकता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में संघर्ष निवारण के तरीके के रूप में वार्ता तथा मध्यस्थता सम्मेलनों के प्रयोग में लगातार वृद्धि ने गांधीवादी प्रकृति की प्रासंगिकता को और अधिक बढ़ा दिया है। लोकतंत्र एवं गांधी का सत्याग्रह। लोकतंत्र में सत्याग्रह का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र के संदर्भ में भी आज जगह जगह सत्याग्रह होते हैं। गांधी का कहना है, जब तक समाज में पूरी तरह बदलाव नहीं आएगा, ऊंच नीच का भाव और असमानता बनी रहेगी। जब तक सत्ता तथा आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, अधिकांश जनता गरीब बनी रहेगी तथा चंद लोग अमीर बने रहेंगे। तब तक सत्याग्रह चलता रहेगा। भारत से अंग्रेज तो चले गए, परंतु नौकरशाही अभी भी उसी तरह कायम है, गरीबी मुंह बाए खड़ी है। गांधी का यह कथन उचित ही जान पड़ता है कि लोकतंत्र में सत्याग्रह का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब सभी उपलब्ध जनतांत्रीय व संवैधानिक साधन निष्क्रिय हो जाएं, सब्र का बांध टूट जाए, अन्याय असहाय हो जाए, तभी सत्याग्रह की सार्थकता सिद्ध होगी। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एवं भारत में गांधी के सत्याग्रह का इतिहास यह बताता है कि सत्याग्रह की लड़ाई में निराशा का कहीं भी स्थान नहीं है। विजय प्राप्त करने के लिए इतना ही आवश्यक है कि हम अपने ज्ञान, अनुभव तथा योजना पर दृढ़तापूर्वक डटे रहें। गांधी को ईश्वर की अनुकंपा में बहुत विश्वास था। उनका कहना था कि सत्याग्रही के सारे आधार जब ढीले पड़ जाते हैं, वह सर्वथा निर्बल हो जाता है और उसके चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब ईश्वर ही उसकी सहायता करता है। पृष्ठ संख्या 146। असंख्य कष्टों के बावजूद सत्याग्रही अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए। उन्हें ईश्वर की सहायता मिली और वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। आज स्थिति यह है कि गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को देश में कोई भी नहीं मानता। एक ओर बहुत से देश आत्मरक्षा एवं अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए अस्त्र शस्त्र का जमाव कर रहे हैं, तो वे ही देश दूसरी ओर मात्र दिखावे के लिए विश्व शांति की बात करते हैं और गांधी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आदि का राग अलापते हैं। यदि विश्व को विध्वंसक युद्ध एवं पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, तो विश्व के सभी देशों को स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर गांधी के सत्य व अहिंसा के संदेश को सही मायने में अपनाना होगा, तभी विश्व में शांति एवं अमन चैन कायम हो सकेगा। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व का विनाश होकर ही रहेगा। पर्यावरण इतना दूषित होता जा रहा है कि मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इसका मुख्य कारण है विषैले रासायनिक हथियारों का निर्माण। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए बमों पर दुष्प्रभाव अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः आज हम यदि पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व को बरकरार रखना चाहते हैं, तो निशस्त्रीकरण करना सभी देशों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने का भी हमें व्रत लेना होगा। इसी में मनुष्य एवं विश्व की भलाई है। गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से विश्व को संदेश दिया है कि अन्याय व अत्याचार को चुपचाप सहन करना ईश्वर एवं मानवता के प्रति अपराध करना है। अतः जहां अन्याय होता है, उसका विरोध अवश्य सत्य एवं अहिंसा के आधार पर करना चाहिए। इसके लिए चाहे मृत्यु का भी आलिंगन क्यों न करना पड़े। गांधी मृत्यु से नहीं डरते थे। उनका कहना था, सत्याग्रह के संबंध में अपने सत्य का आग्रह रखते हुए अनायास सत्याग्रही मृत्यु का आलिंगन करे, इससे अधिक मंगलमय परिणाम की कल्पना वह कर ही नहीं सकता। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में यह सिद्ध कर दिखाया कि अन्याय एवं अत्याचार का अस्थायी तथा न्यायसंगत विरोध केवल शांतिपूर्ण सत्याग्रह के रास्ते से ही संभव है। एक ऐसे रास्ते पर चलकर जिसमें न तो असत्य, हिंसा, अन्याय, भेदभाव, वैमनस्य तथा ढोंग, सार्वजनिक दिखावे अथवा स्वार्थ सिद्धि का कोई स्थान होता है और न ही विरोध के प्रति घृणा व द्वेष का। सत्याग्रही अपनी इस मान्यता पर दृढ़ रहता है कि उसके विरोधी अथवा विपक्षी को भी उसी सत्य रूपी परमात्मा ने जन्म दिया, उसमें भी उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विराजता है, उसमें भी तर्क करने तथा आत्मसंयम की क्षमता है तथा इन सब के आधार पर उसे भी इस दुनिया में जीने और अनुसरण करने का उतना ही अधिकार है जितना स्वयं उसे। इसलिए सत्याग्रही अपने विरोधी की अन्यायपूर्ण धारणा, अभिव्यक्ति तथा कार्य से घृणा करता है, अपने विरोधी से नहीं, उसके असत्य, हिंसा, अन्याय, विद्वेष का उतरत वह सत्य, अहिंसा, न्याय तथा उसके प्रति अबाध प्रेम से देता है, उसे अपनी आत्मा एवं तर्क का अनुसरण करने को प्रेरित करता है तथा सदा सत्य रूपी परमात्मा जो आत्मा के रूप में हम सब में वास करता है से यही प्रार्थना करता है कि वह उसे तथा उसके विरोधी दोनों को सम्मति प्रदान करे जिससे सत्य, अहिंसा, न्याय तथा परस्पर प्रेम का वातावरण बने। यही वह गांधीवादी रास्ता है जो हमें अस्थायी समाधान की ओर अग्रसर कर सकता है। संदर्भ: पहला, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 1998, पृष्ठ संख्या 341। दूसरा, जेबी कृपलानी, गांधी एक राजनीतिक अध्ययन, वाराणसी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 1981, पृष्ठ संख्या 63। तीसरा, नाना देशमुख के लिए साक्षात्कार पर आधारित। चौथा, रामविलास शर्मा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, खंड 2, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 1982, पृष्ठ संख्या 437। पाँचवा, रजनी पामदत्त, आज का भारत, दिल्ली, मैकमिलन इंडिया, 1988, पृष्ठ संख्या 351। छठा, जेबी कृपलानी, गांधी एक राजनीतिक अध्ययन, वाराणसी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 1981, पृष्ठ संख्या 9। सातवां, रिचर्ड ग्रेनियर की पुस्तक कैप्चरिंग द कल्चर का संक्षेपण। आठवां, गांधी मार्ग सितंबर अक्टूबर 1990। नवा, गांधी मार्ग सितंबर अक्टूबर 1990।